कीर्ति वापस महला गई थी। हालांकि वो आस्तिक से या किसी से भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। दरअसल जो भी रजत ने किया था उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आस्तिक से कुछ कह भी सके। लेकिन आस्तिक की जो भी नाराजगी थी वो रजत के साथ थी। कीर्ति का इन सब से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो कीर्ति के साथ सामान्य तरीके से बात कर रहा था। आस्तिक सबके साथ मौजूद था लेकिन वो सबसे कटा कटा सा रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मैलिटी निभाने के लिए ही खड़ा है। ताई सबके साथ इस समय बैठी हुई थी और सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। प्रणाली, कीर्ति, जानवी सब इस समय ताई को देख रहे थे। ताई जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोग भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? कीर्ति कहती है, मुझे नहीं पता ताई जी कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि अरुणिमा को वापस कैसे लाया जाए। सच बताऊँ तो मुझे अरुणिमा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जानवी भी कहती है, हाँ ताई जी, मुझे भी भाभी को घर वापस लाना है, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर वो इस घर में नहीं आना चाहती है तो आपने किसी भी तरीके से मना लीजिए, मैं उन्हें लेकर दिल्ली चली जाऊंगी। पर प्रणाली शक्ति से उन दोनों को देखकर कहती है, चुप करो तुम दोनों, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताई जी, अरुणिमा यहाँ वापस आएगी, मैं भाई से बात करूंगी। ये घर अरुणिमा का भी है और अगर अरुणिमा फिर भी यहाँ नहीं आती है तो भी उसे आना होगा। उसके पेट में हमारे खानदान का वारिस है, कम से कम इसीलिए तो उसे वापस आना ही होगा। प्रणाली भले ही अरुणिमा की तरफ सहानुभूति दिखा रही थी लेकिन उसके बात करने का तरीका अभी भी वैसा ही था, जैसे कि वो किसी पर एहसान कर रही हो। ताई जी ने सबको देखकर कहा, चुप रहो तुम सब, अपने अपने तरीके से इस बात को कह रही हो। किसी ने अरुणिमा की तरफ से सोचने की कोशिश की है, उस पर क्या बीत रही होगी? यहाँ पर तुम सब अपने अपने फायदे के लिए अरुणिमा को वापस लाना चाहते हो, लेकिन अरुणिमा का क्या? कोई उस बेचारे के बारे में सोच ही नहीं रहा है। प्रेग्नेंट होते ही पति ने छोड़ दिया है और उसके बाद यहाँ वहाँ ठोकरें खा रही है, लेकिन अरुणिमा तो फिर भी खुद को संभाल लेगी। पर इस समय जिसकी अकल ठिकाने लगानी है वो है आस्तिक। उसे समझना होगा कि अरुणिमा कोई सामान नहीं थी जिसे उठाकर उसने यहाँ से बाहर फेंक दिया है। वो उसकी पत्नी थी और उसने जो किया है वो गलत किया है। सब लोग ताई जी को देखते हैं तो ताई जी कहती हैं, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम आस्तिक को इस बात का एहसास दिलवा सकते हैं। अगले दिन सुबह आस्तिक सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है, पर इस वक्त उसने घर के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक शर्ट थी। वो शर्ट लेकर वो बाहर हॉल में खड़ा होता है और जानवी से कहता है, जानवी मेरी शर्ट में बटन नहीं है, इसमें एक बटन लगा दो ना। जानवी हाँ में सिर हिलाती है और आस्तिक की तरफ बढ़ ही रही होती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर आस्तिक से वो शर्ट लेने ही वाली होती है कि तभी दरवाज़ा खुलता है और अपने कमरे से पृथ्वी बाहर आते हुए कहता है, जानवी एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल केस की फाइल नहीं मिल रही है, आकर देखो ना। जी अभी आ रही हूँ, ऐसा कहते हुए जानवी कमरे की तरफ चली जाती है। आस्तिक के हाथों में वो शर्ट अभी भी थी, जानवी तो वहाँ से जा चुकी थी। आस्तिक उस शर्ट को प्रणाली की तरफ पढ़ते हुए कहता है, प्रणाली तुम लगाओ बटन। प्रणाली अपने नाखूनों पर नेल पेंट लग रही थी। उसने अपने नाखून हवा में लहराते हुए और अपने मुंह से गोल गोल छोटे छोटे हवा छोड़ते हुए आस्तिक से कहा, भाई मेरे हाथों में अभी नेल पेंट लगी है और आपको लगता है मैं शर्ट पर बटन लगाने टाइप वाली लड़की हूँ? ये सब आप किसी और से कहिए। ऐसा कहते हुए प्रणाली वहां से उठती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। आस्तिक नामे सिर हिलाते हुए प्रणाली को जाता हुआ देखा है तो ताई अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ताई जी भी वहां से धीरे धीरे करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अब वहां पर सिर्फ कीर्ति बैठी हुई थी। आस्तिक कीर्ति को देखा है तो कीर्ति धीरे से उठकर खड़ी होते हुए कहती है, लाइए भाई मैं लगा देता हूँ। लेकिन कीर्ति इस समय प्रेग्नेंट थी और आस्तिक उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी कीर्ति जब से यहाँ आई थी उससे कटी कटी रहती थी। आस्तिक ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तुम आराम करो, मैं किसी सर्वेंट से कह देता हूँ। आस्तिक वापस अपने कमरे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे और आराम से खाना खा रहे थे। जानवी एक सर्वेंट के साथ सबके प्लेट पर नाश्ता रख रही थी। आस्तिक नाश्ता करता है कि तभी उसे एक दस्क लगती है और उसे खांसी आने लगती है। लेकिन अभी पानी का ग्लास सबके सामने नहीं रखा था, सिर्फ एक ही पानी का ग्लास था जो थोड़ी दूरी पर था। जानवी जल्दी से वो अपनी उठाकर आस्तिक की तरफ आ ही रही थी कि तभी पृथ्वी को भी खांसी आने लगती है और जानवी जल्दी से पृथ्वी के पास चली जाती है। वो उसे पानी पिलाती है और उसके पीठ को सहलाने लगती है। आस्तिक का हाथ हवा में ही रह गया था क्योंकि जब जानवी पानी ला रही थी तो आस्तिक ने अपना हाथ उठाया था पानी लेने के लिए, पर अब जानवी पृथ्वी के पास थी और उसे संभाल रही थी।
अचानक से आस्तिक के सामने वो दिन याद आ जाते हैं जब वो लोग इसी तरीके से बैठकर नाश्ता कर रहे थे और ऐसे ही आस्तिक को खांसी आ गई थी तो अरुणिमा अपना नाश्ता छोड़कर सबसे पहले पानी का ग्लास लेकर आस्तिक की तरफ आती है और उसे पानी पिलाता है। आस्तिक अपनी यादों से बाहर आता है और देखता है कि सब लोग अपना अपना नाश्ता कर रहे थे, किसी ने भी आस्तिक की तरफ नहीं देखा था। सविन जल्दी से आस्तिक के सामने पानी का ग्लास रखते हैं। आस्तिक चुपचाप वो ग्लास उठाता है और उसे पीने लगता है। शाम के वक्त आस्तिक ऑफिस से घर आता है। वो सब इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। आस्तिक भी उन सब के पास आता है और कीर्ति से कहता है, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? कीर्ति मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है तो आस्तिक भी मुस्कुरा देता है। जानवी वहाँ आती है तो आस्तिक कहता है, जानवी एक कप कॉफ़ी बना दो। जानवी हाँ में सिर हिलाती है और फिर किचन में चली जाती है। आस्तिक वहीं बैठा हुआ था, वो अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था, लेकिन तभी कुछ करते करते उसे ध्यान में आता है कि जानवी बहुत देर से कॉफ़ी बनाने को गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई है। वो किचन की तरफ देखता है। आस्तिक सर्वेंट से कहता है, जाकर देखो जानवी अभी तक कॉफ़ी लेकर क्यों नहीं आई है।